Om Shanti. Good morning. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको अभी सेवा के कारण मधुबन में आने का चांस है. और हर बार जब मधुबन आते हैं तो लगता है कि पहली बार आ रहे हैं. और बचपन के दिन याद आते हैं जब सब दादियां थी अपनी कुटिया में और गुड मॉर्निंग करने जाते थे. और आज बाबा कई बातें स्पष्ट कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं कि हमारी धारणा कैसी होनी चाहिए. तो सरल स्वभाव, सादगी और सिंप्लिसिटी, ऐसे कहा जाता है ना कि सादगी हमारी शक्ति है. और यही जो धारणा है इससे ही हमारे जो यज्ञ है वो उसका फाउंडेशन है. दादियों ने इतना त्याग तपस्या किया इसलिए हम यहां बैठे हैं. न सिर्फ यहां लेकिन हमारे लिए तो लंदन और ऑक्सफोर्ड. दादी जानकी जी बस एक संकल्प करती थी और वो बात हो जाती थी. तो वो कौन सी शक्ति थी जिससे एक संकल्प करो और काम हो जाए? तो पवित्रता की शक्ति तो है ही, लेकिन दादी में वो सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, और वो तो बातें मैं बाद में भी बता सकती हूँ, लेकिन इनों से सीखना है. फिर बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं है. और सर्विसेबल भी कौन कर पाएंगे? जो फेथफुल है, जिसको निश्चय है, आज्ञाकारी है. और लास्ट में बाबा कहते संतुष्ट. संतुष्ट से ही सेवा हो सकती है. पहले अपने को संतुष्ट करो. और यह भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि माया भी बहुत बड़ी होती जा रही है, चमत्कार होती जा रही है कि माया तो अपना चमत्कार दिखाती ही रहेंगी, लेकिन उसमें हमको संतुष्ट रहना है. कितने आईफोन्स निकलते हैं, कितनी गाड़ियां निकलती है, कितने प्रकार के फैशन के कपड़े निकलते हैं, तो क्या उसके पीछे भागना है क्या? इसलिए जो है जितना है उससे संतुष्ट, उसमें शक्ति है. ये मेन बात है, सिंप्लिसिटी में शक्ति है. तो आज है 30 सितंबर की मुरली. मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने. इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो. प्रश्न: उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: कई बातें हैं. पहला, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे. तो जैसे हम सुनते हैं हम अपने को चेक करें, सिर्फ नोट नहीं, मुरली अपने लिए है ना, चेकिंग के लिए. दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे. तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे. चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे. ये कमाई है ना, इसलिए अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। और छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ये कौन बोल सकता है दिल से, भावना से, फीलिंग से। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बच्चे के सामने, सॉरी, हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथारत रीति कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथारत रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे, जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही है। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती है, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारिया बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारिया और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। कैसे पावन बनते हैं? आत्मा जितना बाप को याद करेंगी तो पवित्र बन जाएगी। रोज बाबा यही बात रिपीट करते रहते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बन जाएंगे। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। यह भी तुम बच्चे को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वा मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर क्या करती है? माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती है, पूजा करती है। आजकल राइट, कृष्ण की बात हुई, अभी क्राइस्ट की बात। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर मां की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है, क्राइस्ट की आत्मा, ये ध्यान से सुनना, क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को, अच्छी बात है, बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। तो किसको मारा? जीसस को मारा या क्राइस्ट को मारा? या जीसस, क्राइस्ट तो पैगंबर है। जिसने प्रवेश किया उनको दुख मिला, सत्तो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सत्तो प्रधान अवस्था में आती है, जब नीचे आती है सत्तो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सत्तो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। तो कौन बोलता है? मुझे दर्द है, तो कौन बोलता है, आत्मा या शरीर? यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है, जैसे कोई घर में, आपका घर है, आप घर में रहते हो तो आप कहते हो ना, मेरा कमरा, मेरी ऑफिस। तो यह आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, इस शरीर में कोई रहने वाला है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। परलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अच्छा, अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है दुख हरने, बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्थी वेल्थी बनती है, मूल वतन में तो हेल्थी वेल्थी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके टिके हुए है, आत्मा शांति स्वधर्म में टिके हुए है। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो तो ये ऑर्डिनेंस है बाबा का आज, किसको दुख नहीं देना। तो दादी भी बहुत याद आती है, क्योंकि दादी भी बार बार, दादी से मुख से भी कई बार ये सुना, उसको दुख मत दो ना, उसको दुख मत दो ना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, यह लड़ाई का मैदान है लेकिन गुप्त। हरेक आत्मा अपने साथ लड़ रही है, अपने संस्कारों से लड़ रही है, तो अपने को दुख दे रही है इसलिए दूसरे को दुख दे रही है। तो वह है प्रत्यक्ष, यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है, बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा, उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। उन्हों को माना जो बाहर, एक्चुअली उस समय वो चाइना इंडिया लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए अभी बाबा उस पर बोल रहे हैं। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी है, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते। मतलब अच्छा कर्म किया तो आ जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने के लिए तो ये पुरुषार्थ। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सीख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूं उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहां और है। बाप कहते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ये भी डीप बात है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान कुछ स्थूल चीज नहीं है ना। ज्ञान इज नॉट फिजिकल, इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब है। अब शिव बाबा कह रहे हैं, मामे कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती है, लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, वहां मना सतयुग में, वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहां कितना मतभेद है, पानी पर जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तो ये भी न्यूज में सुनते हो ना, आजकल चल रहा है, पानी बंद कर देते हैं, अनाज बंद कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी बात हमको बहुत अच्छी लगी। हम इसको ध्यान देते हैं कि हम हरेक अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो आप सोचो, आपका घर स्थापन करना है, आपकी ऑफिस स्थापन करनी है, तो कितनी बातें सोचनी पड़ती है। इम्प्लॉइज चाहिए, फिर वस्तु चाहिए, फिर कुछ पर्पस चाहिए, मिशन चाहिए, राइट? तो यहां भी हमारा स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। आप तो ज्यादा समझते हो मेरे से, वनवा क्या है और क्या स्थिति होनी चाहिए। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो, भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। कितनी खुशी की बात है, भारत फिर से स्वर्ग बनना है। भल मैं वहां विदेश में रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत हिंदुस्तानी है, इसलिए बाबा जब कहते हैं तो हमको भी अंदर गदगद होता है। समझते भी है भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। हाँ, तो इसके ऊपर भी हमको बताना है, बाप सभी का है, सबका हक है। तो मैं जब बारेन में ही थी, तो तभी दादी ने कहा कि आप रोज हमको एक दो मिनट फोन करो। तो उस समय वो स्काइप एप्लीकेशन निकला था, ये है लेट 90s अर्ली 2000 की बात। तो उस पे क्रेडिट डाला और मैं रोज दादी को 10 बजे यूके टाइम 10 बजे दादी को फोन करती थी और कुछ ना कुछ दादी सुनाते थे, कुछ मुरली से टोटका कुछ सुनाते थे। तो एक बार फिर हमको दादी ने कहा कि आपकी जिम्मेवारी सिर्फ ये है कि आपको मैसेज देना है, आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि आपको ब्राह्मण बनाने हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान देश है ना। तो हमको थोड़ा भारीपन लग रहा था, प्रेशर लग रहा था कि मैं कहाँ आई हूँ, क्या करना है, बाबा क्या चाहते हैं। तो दादी ने बिल्कुल हमको हल्का कर दिया कि आपको बस मैसेज देना है। उसके बाद बस मैं वही सोचती थी कि हमारी ड्यूटी है, बस वहां बैठे हैं, हमने हाँ कहा है, बैठे हैं, हमको बस मैसेज देना है। क्योंकि दादी ने कहा ना कि सबको, मतलब सब आत्माओं को कुछ न कुछ मिलेगा बाप से, तो सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूं और सबको कहता हूं, मां में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये आज की बात है ना, कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहां दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वॉर होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे, विश्व में वॉर होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे, यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं माना परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर देते हैं, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, मतलब क्लियर अक्षरों से डेट तारीख सब कुछ आपको पता है ना, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह है जो झगड़ते कौन है, जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। पुरुषार्थ जो अब करेंगे वो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएंगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, किसको विलायत का बूट चाहिए, हमको तो भारतीय चीजें चाहिए और आपको विलायत की चीजें चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवा में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेगा। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहां तुम यह आश क्यों रखते हो, यहां तो बहुत सिंपल रहना है। तो इंग्लिश में मैं हमेशा कहती हूं कि अपनी लीग, जैसे फुटबॉल लीग होती है ना, क्रिकेट लीग होती है, अपनी लीग बनाओ, अपनी सिंप्लिसिटी की लीग बनाओ, मतलब अपनी ही क्या बोलते हैं, क्रिएट योर ओन फैशन, फैशन ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट। कई बार एक्चुअली कुवैत में हम शॉपिंग जाते हैं तो लोग कहते हैं ओ आई लाइक योर व्हाइट हेयर, क्योंकि क्या है मिडिल ईस्ट में आप किसी को व्हाइट हेयर से नहीं देखेंगे, सब रंग लगाते हैं, तो किसी को ऐसे देखते हैं तो आश्चर्य लगता है। सो बाबा कह रहे हैं या सिंपल रहना है, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। तो आपको पता है ना कि बाबा ने दादी को नर्स बनाया था, तो क्या देते थे? मद। कोई बीमार था तो एक चम्मच मद दे देते थे और वो ठीक हो जाता था। प्लसीबो इफेक्ट, कुछ दिया और मान लिया कि ये दवा है। सो दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजयी है, निश्चय में विजयी है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना बाप, हा? वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हो तो वर्थ नॉट अ पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। एक्चुअली हमको दादी क्यों भेजती थी अलग अलग देशों में, वो दादी की रहम भावना ना, कि बेचारे बैठे हैं, बेचारे को ज्ञान मिले, बेचारे को कुछ राय मिले। ये रहम की भावना, कल्याण की भावना। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। कुछ होता है ना किसी के साथ, या ड्रामा ऐसा कुछ होता है, तो बस ये समझ लो सब नंबरवार है और सबकी तकदीर अपनी है। वहां भी तो नंबरवार पद होंगे, पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल न सके। मुफत अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना पढ़कर गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और धारणा के लिए मुख्य सार, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लो नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। और वरदान बहुत अच्छा है, संतुष्टता के बारे में ये भी सारा सस है। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांत वासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई, अंतर्मुखी होकर के। तो कभी भी कुछ होता है तो मैं हमेशा अपने को पूछती हूँ कि हमको क्या सीखना है इससे। पहले अंदर जाओ, अपने को जांच करो, चेक करो। हमेशा हम दूसरे को दोषी बनाते हैं, लेकिन पहले हम अपने को चेक करें, व्हाट एम आई लर्निंग, हमको क्या सीखना है। और स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। और अव्यक्ति शारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। विस्तार बंद करते चलो अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति।
ओम शांति। कल आप सभी को हमारी अरुणा बहन का परिचय दिया, साथ में तो बताया, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा और भी बताएं कैसे ज्ञान में आए और कैसे कहाँ कहाँ सेवाएं की, अब कैसे सेवा चल रही है। तो उनके साथ हमारी और दो बहनें हैं, अनुसुईया बहन और पवित्रा बहन, कहाँ बैठी
हैं
दोनों? मेरी अनुसुईया बहन, आप भी आ जाइए मंच पर। ये दोनों मिडिल ईस्ट में रहती है, मध्य पूर्वी देश। कैसे और धर्म वाली आत्माओं की भी आप बहुत प्यार से सेवा करते हैं और ये भी बाबा के बच्चे बनते हैं। तो पहले थोड़ा अरुणा बहन बताए कैसे ज्ञान में आए, कब आए? बचपन से ही आए होंगे, अभी बैठिए।
तो मैं जब बता रही थी ना कि जब भी मधु बनाते हैं तो पहली बार मधु बनाना 1976 में, मम्मी डैडी को ज्ञान मिला 1974 में, और फिर दो साल के बाद तैयार हो गए और मधु बना रहे थे। और मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन सोचा कि चलो जो छोटी है, क्योंकि हम सात भाई बहन हैं तो सबसे छोटी को ले जाते हैं, तो तभी हमारा चांस हुआ। तभी तो ज्ञान नहीं था और तभी तो खेल पाल में बिजी थे यहाँ कोटियार में, और निर्भय भाई जी भी हमको ले जाते थे बाहर घूमने के लिए। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि 1983 में हमको वो जागृति आई कि नहीं, सचमुच ये ज्ञान सही है, सच है और फॉलो लायक है। तो 18 जनवरी 1983 जब हम बाबा के घर गए तो पूरा दिन बाबा के घर में बिताया, और पता नहीं जब मैं बाबा का चित्र देखती थी तो आंसू ही आंसू आने लगते थे। तो उसके बाद फिर मम्मी को कहा कि हमको रोज मुरली में जाना है, तो तब से 1983 से मुरली सुनती हूँ, अमृत वेला करती हूँ। तभी तो मैं 14 साल की थी। फिर उसके बाद जब 17 साल की थी तो तब से मैं सेंटर में हूँ। और फिर बाद में दादी ने कई जगह भेजा, वैंकूवर में भी थी मैं, फिर उसके बाद टर्की में गई, टर्की में 5 साल रही, उसके बाद बारेन में 5 साल रही। तो बारेन में फिर अंसिया बहन को बुला लिया, तो तभी अंसिया बहन वैसे भी दुबई में थी, अपना परिचय सुनाएंगे। तो फिर हमने साथ में सेवा की, फिर उसके बाद मैं वापस गई वैंकूवर 2-3 साल। फिर जब वापस आई तो कुवैत में, तो कुवैत में वजिया बहन थी, आप जानते हो, बाबा ने उसका कई बार जिक्र किया था मुरली में, अव्यक्त बाबा बाप दादा ने, मतलब मधुबन में बैठ के बाबा ने उनको कुवैत में याद किया। तो हम दोनों ऐसे आजू बाजू में बैठे थे और मैं सुन रही हूँ वो स्क्रीन पे, और बाबा कहती है वो कौन है वो जो मिडिल ईस्ट में है, तो मतलब उनका ही जिक्र कर रहे थे। तो कई बार बाबा ने याद किया, और खास विशेष आत्मा थी, हमने देखा कि कैसे तुरंत तन मन धन से सब कुछ उसने स्वाहा कर लिया। और सिर्फ 12 साल वो ज्ञान में रही, क्योंकि उसके बाद उसने शरीर छोड़ा, उसको लंग कैंसर हो गया था, फिर शरीर छोड़ा। लेकिन बहुत कुछ उसने पाया, बहुत कुछ तपस्या भी की, त्याग भी, और ऐसे अरब और कुवैती और इतना त्याग वो किसी में नहीं देखा। तो उनसे, उसके द्वारा भी फिर कई शहरों में, कई देशों में सेवा शुरू हुई। तो फिर हाँ, कुवैत के बाद फिर अभी हमारा पार्ट है ऑक्सफोर्ड में, तो जयंती बहन ने ऑक्सफोर्ड में बुला लिया है, तो अभी 3 साल से मैं ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में सेवा दे रही हूँ। ओम शांति।
अभी हम अनुसुईया बहन से और पवित्रा बहन से भी सुनेंगे, उसके पहले सूचना बता दें, आप सब ने नोटिस बोर्ड पर भी पढ़ा होगा, सभी मधुबन निवासी, केवल मधुबन निवासी 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे, और मोहिनी बहन खास शांतिवन से आकर मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलेंगे और छोटी सौगात भी देंगे। इसलिए कोई भी मधुबन निवासी मिस न करे, केवल मधुबन निवासी भाई बहने।
ओम शांति। मैं भारत की हूँ, वैसे हैदराबाद से हूँ ओरिजिनली, तो भारत से मैं विदेश में 2000 अक्टूबर में मैं दुबई जाना हुआ, फिर दुबई से मैं लंदन में थी 2004 में, फिर 2005 में अरुणा बहन के रिक्वेस्ट के आधार पर दादी ने मुझे लंदन से बहरीन भेजा था, तो तब से मैं बहरीन में हूँ 2005 फरवरी से। तो मेरा यही अनुभव है कि पहले मैं सोचती थी हम पहले जब भी सेवा में जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो कई संकल्प होता है क्यों कैसा क्या, लेकिन पहला कदम ये चाहिए होता है हिम्मत की कदम, क्योंकि जब भी बाबा किसी को भी सेलेक्ट करते हैं या प्लान बनाते हैं, बाबा के पास पूरा प्लान, ड्रामा की प्लान अनुसार बाबा की प्लान होती है, तो हमको बस यस 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 करते जाना है। ये मेरा अनुभव रहा कि बस हाँ बाबा, हाँ जी बाबा। तो दूसरा, बहरीन जैसे देश, जैसे इन देशों का विदेश की सेवा एक तरफ और इन देशों की सेवा में गुप्त सेवाएं चलते हैं, गुप्त पार्ट चलते हैं। बाबा ने एक बार जो है मिडिल ईस्ट की सेवा के लिए बाबा ने कहा था कि ये अज्ञातवास का पार्ट है, मिडिल ईस्ट में जो सेवाएं होती है ये अज्ञातवास है, तो पांडवों का जो लास्ट खड़ी अज्ञातवास है तो वो मिडिल ईस्ट की सेवा है, जो कि कंप्लीटली गुप्त रीति से होती है। यज्ञ की विधि विधान सब हम गुप्त रीति से करते हैं, वेश भी बदल करके हम रहते हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं है कि हम कौन हैं। तो सूक्ष्म सेवा, मेजरली सूक्ष्म रीति से बाबा हमारे द्वारा काम करता है। कई बार हम सोचते कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा ये अनुभव है 25 सालों में कि कोई भी चीज हम अपने से नहीं कर सकते हैं। इवन हम भले कितना भी बिजी हो जाए सेवा में, फिर ड्रामा हमको याद दिला देती कि इधर पत्ता भी बाबा के बिना हिल नहीं सकता। बाबा की याद के बगैर, बाबा के साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो अभी आजकल तो ऐसा मतलब वेरी डीप एक्सपीरियंस होता है कि बाबा की मिसिंग नहीं होती है, भारत को मिस करती हूँ मैं। भारत से दूर है तो हम भारत को मिस करते हैं, लेकिन बाबा का जैसे कि अंगसंग, जैसे बाबा साथ हैं, बाबा की कभी कमी महसूस नहीं होती है। तो जैसे कि बाबा के साथ रह करके धर्म की सेवा, यज्ञ की जो वातावरण है, क्योंकि सूक्ष्म वातावरण से ही इन धर्मों में जो ताकत बढ़नी है और जो फाइनल सेवाएं है वो होनी है वो होंगे। बाकी गुप्त सेवाएं जो विधि पूर्वक उधर चलती है चलती, लेकिन धरनी जो है भारत जैसी धरनी नहीं है, उधर इतना आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत से बाबा की दुआओं से हम चलते रहते हैं। ओम शांति।
पवित्रा बहन भी सुनाएंगे। पवित्रा बहन भी भारत से गए हैं बहादुरगढ़ से, और वहाँ मिडिल ईस्ट में सेवाएं दे रही है। ओम शांति। तो जैसा हमारे दोनों दीदियों ने आपको बताया मिडिल ईस्ट के बारे में, तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि जब अरुणा दीदी से मुलाकात हुई थी ओम शांति स्टूडियो में, तो उसके पहले कुछ सालों से मैं ऐसे ही अल्लाह अल्लाह बोलती रहती थी। तो मेरा भतीजा मुझसे पूछता था, बुआ आप मुस्लिम हो क्या? तो मेरे मुंह से यही निकलता था कि एक ही तो बात है ना। तो फिर बाद में अल्लाह ने अल्लाह के देश में भेज दिया, और वहां जाने के बाद बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो दिमाग थोड़ा खुला, कि जहां
तो हम सारे जैसे सफर होते हैं, हर एक का स्पिरिचुअल सफर है कि एक जर्नी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग खुलता गया कि जो मैं एक छोटी सोच रखती थी उससे काम नहीं चलेगा, आपको बड़ा दिल करना है, दिमाग थोड़ा खोलना है। जिस आधार से जैसे हम सोचते थे वैसे ही सेवा करनी, नहीं दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। वहां जाके ये सारी चीजें सीखी। और जैसे कुवैत जाने से पहले एक महीना मैं बहरीन में थी अनुसुईया दीदी के साथ, तो क्योंकि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था कुवैत का, तो उस समय मुलाकात हुई थी वहां पर जयंती दीदी से। तो जैसे उन्होंने मेंटली बहुत प्रिपेयर कर दिया था, उन्होंने डायरेक्टली बोला, आपको पता है ना कि अगर आप वहां पे जाके कुछ सुनाओगे मुस्लिम देशों में, कुछ भी ऐसा सुनाओगे, तो हो सकता है वो आपको मतलब मार भी सकते हैं, मतलब इस तरह से कुछ बोला। तो मैंने कहा, दीदी ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम शहीद होंगे तो भगवान के लिए, तो मतलब इससे बड़ी प्रिपरेशन तो कुछ हो नहीं सकती कि यू आर रेडी नाउ। तो फिर वहां पे गए तो मुझे ध्यान है वो बात की, जैसे हमारी अरुणा दीदी कोर्स करवा रही है लोगों को, और मुझे कहा कि चलो आप सीखो कैसे कोर्स करवाते हैं। अब इतने सालों से टीचर्स ट्रेनिंग भारत में की, वो सब तो हम करके गए, लेकिन अब एक नया चैप्टर है, अब सीखो कैसे कोर्स करवाना है। तो दीदी पढ़ा रही है लोगों को, सामने कोई अमेरिकन है, कोई हिजाब वाला, कोई नकाब वाला, कोई कुछ अलग अलग लोग बैठे हैं, और दीदी कोर्स करवा रही है। मुझे कहा पीछे बैठो नोटबुक पेन लेके, और मैंने शुरू किया अपने नोट्स लेने की क्या बोलना है कैसे बोलना है। तो सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं दीदी से, कुछ 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 जो भी मुश्किल मुश्किल सवाल। तो उसी समय मैंने बाबा को, मैंने कहा बाबा ये कहां फंसा दिया मुझे, निकालो फटाफट मुझे यहां से, निकलना है भागना है। तो अंदर अंदर मैं सोच रही हूँ ये सब, पहले एक दो महीने की बात है ये। तो उसके बाद मैंने दीदी को ये नहीं बताया कि मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा सा। खैर वो सब बातें बीत गई। फिर दीदी ने मुझे कहा कि आप एक एक से एक एक को कोर्स करवाना शुरू करो, एक एक को। फिर एक बहन थी इजिप्शियन थी, उसको कोर्स करवाया धीरे धीरे धीरे। फिर मुझे ध्यान है कि एक साल के बाद एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन थी कि हम भी कोर्स करवा रहे हैं, सामने लोग बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है, जैसे दोनों दीदियों ने शेयर किया कि हमें सिर्फ प्रेजेंट रहना है, भगवान को अपना कार्य वो करवा लेंगे, कोई भी होगा तो करवा लेंगे, हम नहीं तो कोई और करेगा। और दूसरी बात एक जो मैं ऐड करना चाहूंगी यहां पर, कि बहुत बदलाव आ रहा है अभी उन देशों में भी। जैसे शुरुआत में जब भगवान का परिचय का लेसन आता था कि भगवान, तो मैं बाबा से बात करती थी कि बाबा क्या परिचय देना है, ना बाबा बोल सकते हैं, ना कोई फॉर्म बता सकते हैं, ना कुछ इस प्रकार का फादर है भगवान हमारा पिता है वो भी नहीं बता सकते, तो बताना क्या है आपके परिचय में। फिर उसके बाद लगता कि नहीं अब कुछ भी हो जाए आपको परिचय तो देना ही पड़ेगा। फिर मैंने एक बार कहा कि भगवान हमारा पिता है ऐसे बोला, तो क्लास में एक लेडी खड़ी हो गई, कहती है क्या बोल रहे हो आप ये, क्योंकि हम पहले से तैयार होते ना तो रिएक्शन नहीं होती। तो उसने, मैंने कहा कि फिर आप बताओ कैसे हम अल्लाह से जुड़े, कैसे उसको याद करें, क्या करें। तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, तो खैर वो कहती है मुझे जाना है क्लास छोड़ के, वो चली गई। और एक महीने बाद फिर से वो मुझे मिली, कहती है मुझे एहसास हो रहा है वो बात सही थी, पिता ही तो है वो। तो इस तरह से बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन लास्ट चीज ये कहूंगी कि आज के दिन ये स्थिति है कि लोग आते हैं, उनको परमात्मा का परिचय भी बहुत देते हैं, खुले दिल से दिया जाता है, आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो एक बहन ने तो कहा आप सिर्फ पिता ही क्यों बोल रहे हो, क्या मां नहीं हो सकती वो, क्या वो भाई नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकती, पति नहीं हो सकता। तो इतना बदलाव है, पहले वो पिता भी नहीं स्वीकार करते थे, अभी कहते सब कुछ तो वही है। और फिर ऐसा लगता है कि जब इस प्रकार के देशों में या ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जब हम होते हैं, जैसे जिसे मुश्किल कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर से भगवान के प्रेम का एक किस्सा क्रिएट होने वाला है, उसके एक्सपीरियंस का कुछ अनुभव होने, वो अनुभव होने वाला है उसके मदद का, कि जिससे संसार को प्रेरणा मिलेगी। तो हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, कहीं मुश्किल देश में गए, मुश्किल स्थिति में गए, अरे हाँ भगवान की भी मदद मिलेगी ना, देखो कितने अच्छे कुछ परमात्म प्रेम के लव स्टोरी क्रिएट होगी। तो इस तरह से ऑफ कोर्स बस प्रेजेंट रहना है और निमित्त बन के सेवा करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइटनेस लगती है, कोई भारीपन या कोई डर ये सब की तो कोई बात नहीं है। ओम शांति।
कुछ कहना तो एक
दूसरी बात जो दीदी मुझे याद दिलवा रही है अभी कि अभी जो है अभी कई बार लगता है कि भाई मुस्लिम देशों में तो एक दो लोग ही आते होंगे सेंटर पे कोर्स करने या फिर बाबा के बच्चे पक्के जो बने होंगे, लेकिन कुवैत की जो हालत है वो यही है अभी कि धीरे धीरे भारतीयों की संख्या से कुवैतीज की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। एक बार हम अनाउंस करते हैं कोर्स, क्योंकि अरबिक में कोर्स होने वाला है, तो एक एक बार में भी लास्ट टाइम जो था वो 105 लोगों ने कोर्स किया, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव है। पहले पांच लोग आते थे, अभी 105 आ रहे हैं, तो बहुत बदलाव है। और बहुत बाबा के बच्चे पक्के भी बने हैं, बहुत पक्के बने हैं। ओम शांति।
रिट्रीट का बताएं, कल से जो आपकी रिट्रीट है, रिट्रीट जो होनी है ना, IPIP, दो शब्द बताए। हाँ बता दो फिर भी थोड़ा, कितने आ रहे हैं क्या से?
तो मिडिल ईस्ट से तो कई देश है, मोरक्को, लेबनन, एक्चुअली मोरक्को लेबनन पहली बार आ रहे हैं, मोरक्को से 10 है, लेबनन से 5 है, और इजिप्ट से 1 है, कुवैत से काफी है, बारिन से काफी, अबू धाबी से, दुबई, सीरिया, सऊदी से है, या तो ये मुख्य कंट्रीज है। बाकी क्या है कि वो लोग तो यहाँ वहाँ मतलब रहते हैं, फिर नौकरी करने के लिए आते हैं इन अमीर देशों में, फिर यहाँ ज्ञान मिलता है, तो काफी अरब्स कई जगह से आ रहे हैं, फिर एशियन तरफ से भी काफी कंट्रीज है, सब नाम नहीं पता है, लेकिन मुख्य तो जो मेन आई थिंक वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, एम आई फॉरगेटिंग सम, इंडोनेशिया। तो शुरू से हम दोनों ने मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया है और दोनों ग्रुप्स अच्छी तरह से मिलजुल जाते हैं, तो अच्छा रहा है अब तक। तो अबाउट 150 टू 160 गेस्ट्स है, फिर 40 उनको संभालने वाले, तो गाइड्स, 40 गाइड्स है, तो लगभग 200 की रिट्रीट है। और जैसे शीलू दीदी ने कल बताया, हम ले आएंगे यहाँ पांडव भवन में उनको 4 तारीख को, या और बारिश है तो पता नहीं कैसे अभी चलेगा काम, लेकिन वो भी आप प्लीज योग करो हमारे लिए कि बारिश भी थोड़ी रुक जाए और कुछ तकलीफ ना। हाँ मिडिल ईस्ट को तो पसंद है बारिश, क्योंकि कभी बारिश आती नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम अच्छा स्मूथली चले इसके लिए प्लीज आप योग करना, आपका सेवा दान देना। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
अभी हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।